वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। छठी पुस्तक जो चूलिका जो है, उसमें द्वितीय चूलिका चल रही है, स्थान समुत्कीर्तन। स्थान समुत्कीर्तन में भी हम बंद के स्थान देख रहे हैं, अलग अलग प्रकृतियों के बंद के स्थान, यानी कितनी नंबर ऑफ प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ कितनी बनती है, ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, मोहिनी की, वेदनी की हमने देखी है, और आयु की भी अभी देख रहे हैं। आयु की भी बात हो गई है, नाम कर्म की चल रही है, आयु की बात कल होगी। तो नाम कर्म की जो बनने वाली प्रकृतियाँ हैं, तो उसमें उन्होंने पहले तो इन जनरल सभी स्थान बता दिए, कैसे 31 वाला स्थान 30 वाला है, 29 वाला है, फिर 28 वाला है, 26 वाला है, 25 वाला है, 23 वाला है, एक वाला, बहुत अच्छा, एक वाला भी है, आठवें गुण स्थान के बाद खाली एक प्रकृति बनती है यशस कीर्ति की, वो एक वाला भी स्थान है, याद अच्छा रखा आपने। तो इस तरह से, परंतु अभी हमने जो देखा ना, अलग अलग गति बांधता है जीव, तो उसके साथ वाली प्रकृति कौन कौन सी उसी के साथ बनती है, तो 30 वाला जो स्थान है तो अलग अलग गतियों की अपेक्षा भी होगा, 29 वाला भी, तो यहाँ गति की अपेक्षा, यानी कौन से गति के साथ अन्य जो प्रकृतियाँ मिलकर उतने नंबर हो जाते हैं, उसकी बात चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ 30 वाला स्थान देख रहे हैं हम। 28 वाला स्थान उन्होंने बता दिया था, नरक गति के साथ वाला बंधने वाला, 28 वाला यानी नरक गति वाला पहले ले लिया उन्होंने अलग, अब तिर्यक गति संबंधी जो है उसकी बात चल रही है। तो तिर्यक गति संबंधी 30 वाला स्थान हमने कल देखा था, 30 प्रकृतिक जिसको कहते हैं, तो वो पंचेंद्रिय वाला हमने देखा था, पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, उद्योत है, वगैरह वगैरह, तो वो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी वो 30 प्रकृति वाला स्थान है, वहां तो ऑप्शन है 6 संस्थान और 6 सहननों में से एक कोई, और वैसा ही 30 प्रकृति का बंध दूसरा गुण स्थान वाला भी करता है, परंतु वहां वो हीन सहनन और हीन संस्थान वो नहीं बांधता छठे नंबर का, क्योंकि हुंडक संस्थान है और असंप्राप्त त्रिपाटिका सहनन है, उसके बंध की विच्छित्ति पहले में ही हो जाती है। तो दूसरे गुणस्थान वाले को भी ये 30 का बंध हो सकता है, तिर्यंच गति संबंधी, यानी तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, उद्योत वगैरह वगैरह पर्याप्त, परंतु वहां 5 संस्थान में से एक और 5 सहनन में से एक बंधेगा, ये उन दोनों में अंतर है, इसलिए उसको अलग बता दिया, स्थान ही अलग बताया। तिर्यंच गति संबंधी एक जो मिथ्यात्व अवस्था में पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत वाला है, और दूसरे गुणस्थान वाला जो बांधता है तिर्यंच गति पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत वाला, ये दो हो गए। अब तीसरी बात अब यहाँ बताने वाले हैं, 107 पृष्ठ पर आए हम। अभी हम पढ़ेंगे पहले ऊपर सूत्र में, 68 नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। तथ्य इमम, नहीं ऊपर है वो 67 नंबर का है ना, वो तो हो गया। हाँ 68 ही हम पढ़ रहे हैं, नीचे के दो लाइन, ऊपर जो प्राकृत में, नीचे के दो। तथ इमम तदीय तीसाए यानी तृतीय तीस वाला, तदीय तीसाए ने तृतीय तीस वाला ठाणम कौन सा है वो बताएंगे अभी। तिरिक्ख गदि बी इंद्रिय ती इंद्रिय चौर इंद्रिय तिन्नम जादिनम एकदरम, तीन में से एक द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर इंद्रिय में से एक, ओरालिय तेया कम्मय शरीरम हुंड संस्थान हुंड संठानम यानी हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान अकेला क्यों लिया? हाँ, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय जीव है इसलिए वहां हुंडक संस्थान लिया। ओरा लिया शरीर अंगोवंगम असंपत्त सेवट्ट शरीर संगठनम, सहनन भी यही लिया, कौन सा? असंप्राप्ता सुरपाटी का सहनन लिया, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय है ना इसलिए। वन्न गंध रस फासम तिरिक्ख गदि पावगाणु पूवी अगुरु अलहुव उवघाद परघाद उत्साह उज्जोवम, ये उद्योत के साथ लिया इसलिए तीस होगा। आगे जब उनतीस वाले बताएंगे उद्योत बिना वाले उनतीस, बाकी ये प्रकृतियां वही होगी। तो उद्योत प्रकृति कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। अपसत्त विहाय गति यानी अप्रशस्त विहाय गति, यहाँ दो का ऑप्शन नहीं दिया, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय को अप्रशस्त विहाय गति बताएं। तस बादर पज्जत्त पत्तेय शरीरम थिर अथिराणम एकदरम, थिर और अस्थिर में से एक, अभी ये ऑप्शन यहाँ पर आ गए। शुभ अशुभाणम एकदरम दुभग दुस्सर अनादेज्यम जसकित्ति अजसकित्तिनम एकदरम निमिण नामम, ये कहाँ ऑप्शन है उसकी बात बता दी उन्होंने। ये निर्माण है उसमें ऑप्शन नहीं होता, वो तो हमेशा सबको होता ही है, वो तो निरंतर बनने वाली प्रकृति है। आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक उसकी बंदे की विच्छित्ति वहां हो जाती है, निर्माण बंदेगी एक इंद्रियों के भी बंदेगी। वो निरंतर बनने वाली जो प्रकृतियां बतलाई ना हमने, ज्ञानावरण की है, दर्शनावरण की है, मोहनीय की मिथ्यात्व सोला कषाय भजुगुप्सा है, तेजस कर्मण है, अगुरु लघु उपघात है, स्पर्श रस गंध वर्ण है और ये निर्माण है। इतनी तो निरंतर बनते ही है, जब तक उनका विच्छित्ति नहीं होगी तब तक वो अनादि से ही निरंतर बनती आई है। और जो ऑप्शनल है जिसको हमने सब प्रतिपक्षी कहा था, जैसे वेदनीय में से एक, गोत्र में से दो, गोत्र में से एक, वेद तीन है उसमें से एक, वो युगल है हास्य युगल उसमें से एक, इस तरह से बनती तो है परंतु ऑप्शनल है वह। और अभी जो हमने पहले गिनाई थी वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं, वो तो बंधेगी ही। क्या कौन सी? निर्माण की विच्छित्ति आठवें गुणस्थान के छठे भाग में, तीर्थंकर निर्माण वगैरह वो तो एक साथ सभी बनती है, उसकी विच्छित्ति निर्माण की। यानी तब तक सब सभी जीवों को ये निर्माण वाला बंधेगा ही, किसी भी गति के साथ इसका बंध भी होगा, क्योंकि शरीर की रचना होती है ना, तो निर्माण नाम कर्म तो सबके है, उसका बंध भी होता है और उदय भी चलेगा, उदय तो 13वें तक चलेगा उसका। एदासिम तदीय तीसाए यानी तृतीय तीस वाला पयड़ीनम एकम्मी चेवठानम, इन सबका एक स्थान है। अब इसी का अर्थ नीचे हम देखते हैं, पहले पृष्ठ पर 107 में नीचे, कल यहाँ तक पढ़े ना अरविंद भाई, वो वहीं से अभी पढ़ रहे 68 नंबर का सूत्र का अर्थ। नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त पांच बंध स्थानों में यह तृतीय तीस प्राकृतिक बंध स्थान है। पहले हम थोड़ा दोहराते हैं, तिर्यंच गति संबंधी पांच बंध स्थान कौन कौन से है? अभी हम कौन सा देख रहे हैं? तीस वाला। तो तीस वाला, उनतीस वाला, अट्ठाईस वाला खाली देव और नरक संबंधी होता है, 26, 25 और 23। वो कौन कौन सा है वो आगे आएगा। अभी 29 वाला जो हम देखेंगे ना वो तो बिना उद्योत वाला देखेंगे, और 26 है वो एक इंद्रिय के साथ आतप या उद्योत देखेंगे, 25 बिना आतप उद्योत का एकेंद्रीय पर्याप्त और 23 अपर्याप्त एकेंद्रीय। अभी कौन सी उसमें नहीं है वो क्रम से आएगी बात, रोज हम इसको पढ़ेंगे तो ये तो हो जाएगा। अभी 30 में से ये तीसरा चल रहा है, 30 में से पहला जो था वो मिथ्यात्व गुणस्थान में, वहाँ 6 सहनन 6 संस्थान में से कोई एक था, है ना। फिर दूसरा 30 वाला वो सासाधन संबंधी, उसमें कुंडक और असंप्राप्त सुरपाटिका को छोड़कर रिमेनिंग जो 5 संस्थान और 5 सहनन उसमें से एक का बंद होता है। अब ये जो तीसरा है 30 प्रकृति संबंधी, द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरेंद्रिय, ये भी पर्याप्त जीवों की ही बात है और इनके भी उद्योत है, उद्योत का बंद चल रहा है उसके साथ साथ। डिफरेंस कहाँ है, संस्थान एक ही होगा और सहनन भी एक ही होगा। संस्थान कौन सा अभी हमने देखा था, कुंडक संस्थान, और सहनन असंप्राप्त सुरपाटिका सहनन। देखो एक इंद्रियों में ये सहनन नहीं होगा, देवनारकियों में सहनन नहीं होगा, तो इसलिए वहां वो विशिष्ट प्रकृतियां कम हो जाएगी, समझ रहे। तो इस तरह से अभी हमने ये बाकी तो प्रकृतियां सेम है इसको पढ़ रहे। देखो ये बंद स्थान है, अभी प्रकृतियां गिना रहे क्रम से, तिर्यक गति। अब जो जाति नाम कर्म है, द्विंद्रिय या तीनिंद्रिय या चतुरिंद्रिय, इसमें से एक एट अ टाइम एक जाति नाम कर्म बनेगा, तो द्विंद्रिय जाति, तीनिंद्रिय जाति और चतुरिंद्रिय जाति, इन तीन जातियों में से कोई एक औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ये सभी नाम कर्म है। सभी के आगे नाम कर्म ऐसे हमको समझना चाहिए। एक बार बता दी ना नाम कर्म के ये भेद है। हुंड संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन, वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अग्रु लघु, उपघात परघात उच्छ्वास, ये पर्याप्त जीव है इसलिए उच्छ्वास को भी लिया है, अपर्याप्तों में इसको भी टालेंगे। यानी कौन से जीवों में कौन कौन सी नहीं बनती है वो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे एकेंद्रिय की बात तब ख्याल में आ जाएगी। अब यहाँ उद्योत लिया, उद्योत ये भी ऑप्शनल है ना, किसी के बनती है किसी के नहीं बनती है। जो द्विंद्रिय संबंधी बंद कर रहा है उसके साथ उद्योत बंधेगी ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी किसी को बनती भी है। अप्रशस्त विहाय गति, अब यहाँ द्विंद्रिय तीनिंद्रिय और चतुरिंद्रियों में अप्रशस्त ही विहाय गति होगी, बाकी पंचेंद्रियों में तो हमने ऑप्शनल देखा था, किसी के प्रशस्त किसी के अप्रशस्त देखा था। एकेंद्रियों में कौन सी लेना, प्रशस्त के अप्रशस्त लेना ही नहीं, क्योंकि वहां गमन नहीं है ना उनके, विहाय गति यानी उनका कोई चाल नहीं है, वो चलते नहीं है। हाँ, फिर त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक, दुर्भग दुस्वर अनादेय, अभी इनके कोई यहाँ ऑप्शन नहीं है, किसी के सुभग होगा किसी के सुस्वर होगा ऐसा नहीं है, यशस कीर्ति यशस कीर्ति इन दोनों में से कोई एक। अभी कोई एक किसमें किसमें लगा, देखो स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ और यशस कीर्ति या यशस कीर्ति, इतने में ही ऑप्शन हो गए। तथा निर्माण नाम कर्म, इन तृतीय 30 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। देखो यहाँ भंग कितने हो गए, तो हमने द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय के 3 में से एक देखा था, और अभी यहाँ स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ उसमें से एक लिया, और यशस कीर्ति यशस कीर्ति, तो इसके भंग कितने हो गए, यानी ऑप्शनल प्रकृतियाँ 3×2×2×2 2×2×2×8×3×24 हो जाएगी इसके भंग, बराबर। अब शंका, विकलेंद्रिय जीवों के हुंड संस्थान इस एक प्रकृति का ही बंध और उदय होता है यह सूत्र में कहा है, किंतु यह घटित नहीं होता क्योंकि विकलेंद्रिय जीवों के 6 संस्थान पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न है। अब उसका समाधान। यह कोई दोष नहीं है क्योंकि सर्व अवयवों में नियत स्वरूप वाले पांच संस्थानों के होने पर दो तीन चार और पांच संस्थानों के संयोग से हुंड संस्थान अनेक भेद वाला उत्पन्न होता है। क्या कहते हैं, एक तो निश्चित अवयव रूप ये जो पांच अलग अलग संस्थान तो बताई है, उसके अलावा जो कॉम्बिनेशंस में हो गए जो कुछ अलग अलग आकार है जो हम बता भी नहीं सकेंगे, ऐसे भी आकार होगी ना कॉम्बिनेशंस वाले, दो के कॉम्बिनेशन या तीन के या चार के, तो ऐसे जो है उनके संयोग से यानी कॉम्बिनेशन से ये हुंड संस्थान अनेक भेद वाला उत्पन्न होता है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय के अनेक प्रकार के आकार है तो उसके लिए उसको हुंड संस्थान कहा है। और वे पांच संस्थान प्रत्येक अवयव के प्रति इस प्रकार के आकार वाले होते हैं यह नहीं जाना जाता है क्योंकि इस काल उस प्रकार के उपदेश का अभाव है। अलग अलग अवयवों के जो अलग अलग जो कोई प्रोपोर्शन है संस्थान यानी उनके आकार है, तो हो सकता है कि उस विशिष्ट जीव के लिए वह आकार है परंतु अभी वैसा उपदेश यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ सबको मिलकर हुंड संस्थान कह दिया। और उन संयोगी भेदों के नहीं ज्ञात होने पर इन जीवों के अमुक संस्थानों के संयोगात्मक यह भंग है यह नहीं जाना जा सकता है। कौन से विशिष्ट जीव को, क्योंकि संस्थान तो ये मुख्य तो पांच बताए, जैसे वर्ण जब हम बताते हैं तो मुख्य वहां पांच वर्ण बताएंगे, फिर बाकी तो उसके कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, है ना। तो रंगों की तो कितनी छटाएं होती है, तो वो संयोगात्मक यानी कॉम्बिनेशन वाली होगी। वैसे यहाँ अनेक जो अलग अलग आकार संस्थान बताए हैं ना, समय चतुरस्त्र है और न्यग्रोध परिमंडल है वगैरह वगैरह, तो उनके कॉम्बिनेशन वाला कोई संस्थान हो सकता है, परंतु ये कौन सा कॉम्बिनेशन है उसका उपदेश तो उसका तो हमें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए सबको मिलकर यहाँ हुंड संस्थान बता दिया। देखिए यहाँ ऐसा कहते हैं कि कोई विशिष्ट आकार उनको बता नहीं सकते, वो कॉम्बिनेशन ऑफ संस्थान हो सकते हैं। जैसे हमने पांच छह संस्थान बताए ना, उसमें से पहले पांच संस्थान समय चतुरस्र संस्थान है, फिर न्यग्रोध परिमंडल में ने हम कहते ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, इस तरह से उसका जो डिस्क्रिप्शन है वैसा कोई विशिष्ट डिस्क्रिप्शन इन जीवों के लागू नहीं होता, भले उनके अवयव प्रोपोर्शनेट भी क्यों नहीं हो, परंतु वो कौन सा कॉम्बिनेशन है ऐसा उसका उपदेश भी अवेलेबल नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा समझ सकते हैं कोई हाइट में कम है, मतलब जिसको हम वामन संस्थान कहेंगे, उसको यहाँ कुब्जक भी हो सकता है, मतलब वो कुंदो थई सके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू संघनन ऐसा हो गया ना वो
संस्थान।
तो ऐसे अनेक प्रकार के वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसका उपदेश अभी नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको एक अलग सा एक ही बताया है हुंड संस्थान।
जैसे कोई भ्रमर है, बिच्छू है, उनके कौन से हम आकार कहेंगे, कॉकरोच है ना, तो इसलिए सबको मिलकर हुंड संस्थान कह दिया। वेरिएबल जो कोई है या जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, इस तरह भी उसका अर्थ ले सकते हुंड संस्थान का। अतएव सभी विकलेंद्रिय जीव हुंड संस्थान वाले होते हुए भी नहीं जाने जाते हैं यह बात सिद्ध हुई, उसी का विशेषार्थ बताते। उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि यद्यपि विकलेंद्रिय जीवों के एक हुंडक संस्थान ही आगम स्वीकार करता है, तथापि उनमें संभव अवयवों की अपेक्षा अन्य भी संस्थान हो सकते हैं। हर एक के अलग अलग अवयव है ना, पैर है, अभी उसके जो कोई ट्रंक है, अलग कीटक है, या जो कोई भी दो इंद्रिय अलग है, तीन इंद्रिय अलग है, चतुर इंद्रिय अलग है, उनके अपने अपने अवयव होते हैं और उसकी अपेक्षा उनका अलग अलग आकार भी होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव में भिन्न भिन्न संस्थान का प्रतिनियत स्वरूप माना गया है, यानी उस जीव के लिए वो निश्चित है आकार। जैसे भ्रमर है तो उसका निश्चित आकार है, बिच्छू है उसका निश्चित आकार है, उनके लिए वो निश्चित है, प्रतिनियत यानी वो निश्चित है। किंतु वर्तमान में यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके किस अवयव में कौन सा संस्थान किस आकार रूप से होता है, अलग अलग अवयवों के संस्थान बता सकते हैं, परंतु सब मिलकर कौन सा ऐसा अलग संस्थान का नाम नहीं ले सकते। जैसे हाथ के लिए अलग संस्थान है, उसका आकार संस्थान है ना, आकार पैर के, ये उसके ट्रंक बॉडी है उसका अलग आकार, उसका सिर जो है, ऐसा करके आकार अलग अलग बता सकते हैं, परंतु जिसका उपदेश अभी अवेलेबल नहीं है, तो पूरा ही मिलकर जो शरीर का आकार कैसा है, तो उसके लिए हुंड संस्थान ऐसे कहने में आया। अतएव विकलेंद्रिय जीवों में अंगोपांगों की संख्या वृद्धि के अनुसार मूल संस्थान एक हुंडक के साथ साथ अवयव संबंधी संस्थानों के, यानी उनका मूल संस्थान यानी पूरा ही बॉडी का संस्थान हुंडक ही होगा, उसके साथ साथ अवयवों में वो संयोगी संस्थान होंगे, पूरा मिलकर हुंड संस्थान, और उसके पैर के अब आकार या सिर का आकार या कोई जो कुछ टेल होगी तो उसका आकार, ऐसी बात। तो अवयव संबंधी संस्थानों के द्विसंयोगी यानी दो संस्थानों का संयोग कॉम्बिनेशन वाला कोई, त्रिसंयोगी, चतुस्संयोगी और पंचसंयोगी भेदों की निमित्त से दो आदि संस्थानों की संभावना होने पर भी, यानी वहाँ कॉम्बिनेशन वाला होगा, न्यग्रोध परिमंडल और वामन ऐसा एक साथ वाला भी हो सकता है ना, ये कॉम्बिनेशन वाला, किसी दो का या तीन का कॉम्बिनेशन या चार का या पांचों का मिलकर कॉम्बिनेशन, हुंड को छोड़कर पांच लिए, सबका मिलकर तो हुंड लिए ही लिया, उसके साथ साथ कोई एक अवयवों संबंधी संयोगी संस्थान का भेद हो सकता है, संभावना यानी पॉसिबिलिटी होने पर भी, शक्यता होने पर भी, आगम में इन संयोगी संस्थान भेदों की विवक्षा नहीं की गई है, उस संबंधी उपदेश अभी लोप हुआ है या अभी अवेलेबल नहीं है, और इसलिए उनके एकमात्र हुंडक संस्थान ही बतलाया गया है। द्विसंयोगी आदि भंगों के लिए देखो इसी भाग के पृष्ठ 72 का विशेषार्थ। ये भंग किस तरह से होते हैं उसकी बात हमने, द्विसंयोगी भंग यानी दो का भंग, तीन का भंग, ये वो संख्या कैसे निकालनी है उसकी बात है। देखो विशेषार्थ फिर पढ़ते हैं हम यहाँ 72 पृष्ठ पर। उसके पहले से ही ले लेते हैं, ये संस्थान नाम करने की बात है। 70 पृष्ठ पर थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाएगी। 70 पृष्ठ पर जो अर्थ लिखा है ना, 34 का अर्थ वहां से लेते हैं। जो शरीर संस्थान नाम कर्म है वह 6 प्रकार का है। समचतुरस्र शरीर संस्थान नाम कर्म, न्यग्रोध परिमंडल शरीर संस्थान नाम कर्म, स्वाति शरीर संस्थान नाम कर्म, कुब्ज शरीर संस्थान नाम कर्म, वामन शरीर संस्थान नाम कर्म और हुंड शरीर संस्थान नाम कर्म। समान चतुरस्र अर्थात समविभक्त को समचतुरस्र कहते हैं, समान रूप से विभक्त हुआ है उसको। जिस कर्म के उदय से जीवों के समचतुरस्र संस्थान होता है, उस कर्म की समचतुरस्र संस्थान यह संज्ञा है। उस कर्म को समचतुरस्र संस्थान कर्म कहते हैं। उसके निमित्त क्या होता है, शरीर का आकार जो है वो समचतुरस्र होता है। न्यग्रोध वटवृक्ष को कहते हैं, न्यग्रोध परिमंडल नाम है ना उसका, न्यग्रोध का अर्थ है वट वृक्ष, ऊपर बड़ा है ना घेरेदार और नीचे उसकी ट्रंक छोटी होती है। उसके परिमंडल के समान परिमंडल जिस शरीर का होता है उसे न्यग्रोध परिमंडल कहते हैं। न्यग्रोध परिमंडल रूप ही जो शरीर संस्थान होता है वह न्यग्रोध परिमंडल अर्थात आयत वृत्त शरीर संस्थान नाम कर्म है। परिमंडल घेरा उसका। स्वाति नाम वल्मिक या शाल्मली वृक्ष का है। उसके आकार के समान आकार जिस शरीर का है वह स्वाति शरीर संस्थान है। यह शरीर नाभि से नीचे विशाल और ऊपर सूक्ष्म या हीन होता है, नीचे ज्यादा और ऊपर ऐसा छोटा। कुबड़े शरीर को कुब्ज शरीर कहते हैं। उसके समान संस्थान जिस शरीर का होता है वह कुब्ज शरीर संस्थान है। जिस कर्म के उदय से शाखाओं के दीर्घता और मध्य भाग के ह्रस्वता होती है उसकी कुब्ज शरीर संस्थान यह संज्ञा है। बौने के शरीर को वामन शरीर कहते हैं। वामन शरीर के संस्थान के समान संस्थान जिसके होता है वह वामन शरीर संस्थान है। जिस कर्म के उदय से शाखाओं के ह्रस्वता और शरीर के दीर्घता होती है वह वामन शरीर संस्थान नाम कर्म है। शाखाएं नहीं, यहाँ तो वनस्पति नहीं लेना है, लिम्स। हाथ पैर छोटे होते हैं ना ऐसे और शरीर लंबा। विषम अर्थात समानता रहित अनेक आकार वाले पाषाणों से भरी हुई मशक के समान सर्व ओर से विषम आकार को हुंड कहते हैं। हुंड के शरीर को हुंड शरीर कहते हैं, यानी अलग अलग आकार जो बताया नहीं जा सकता, विषम आकार जिसको कहते हैं। उसके संस्थान के समान संस्थान जिससे होता है उसका नाम हुंड शरीर संस्थान है। जिस कर्म के उदय से पूर्वोक्त पांच संस्थानों से व्यतिरिक्त यानी इनके अलावा 31 भेद भिन्न अन्य संस्थान उत्पन्न होता है, ये कॉम्बिनेशन वाला कोई अलग संस्थान उत्पन्न होता है। देखो एक 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 बताएंगे तो छह तो ये हो गए। अब हुंड संस्थान तो वेरिएबल है ही, तो उसको छोड़कर जो पांच है उसके साथ साथ वाला ये आगे बताने वाले हैं, तो वो पांच के कॉम्बिनेशन वाला होगा। पांच का कॉम्बिनेशन या चार का या तीन का या दो का, एक का तो कॉम्बिनेशन नहीं कहलाता क्योंकि एक एक तो हमने छह गिना ही दिया है। देखो इसके व्यतिरिक्त 31 भेद भिन्न अन्य संस्थान उत्पन्न होता है, वह शरीर हुंड संस्थान संज्ञा वाला है ऐसा जानना चाहिए। अभी इसी का विशेषार्थ है जो उन्होंने वहां बताया था कि पढ़ो करके। आगे स्थान समुत्कीर्तन चूलिका के सूत्र 68 की टीका में धवलाकार ने कहा है कि सव अवयवेशु नियद सर्व पंच संठानेशु बे तिन्नी चदु पंच संठानानं संजोगेनं हुंड संठानं अनय भेद भिन्नम उपजते। अर्थात सर्व अवयवों में नियत स्वरूप वाले पांच संस्थानों में से ये जो पांच संस्थान है उनका नियत आकार है, निश्चित आकार है। अब उसमें से दो तीन चार व पांच संस्थानों के संयोग से हुंड संस्थान अनेक भेद भिन्न उत्पन्न होता है। इस निर्देश के आधार से हुंड संस्थान को ध्रुव मानकर हुंड संस्थान के द्विसंयोगी आदि भंग कुल मिलाकर 31 उत्पन्न होते हैं जो इस प्रकार है। अभी पांच संयोग का एक ही भंग होगा, पांचों को मिलाया है, पांच में से लेना है तो पांच में पांचों का ही कॉम्बिनेशन एक होगा। पांचों में द्विसंयोगी भंग उसको ध्रुव माना है ना। अच्छा यहाँ छह संयोगी तक ले लिए उन्होंने, हुंड संस्थान को ध्रुव रखा, हुंड संस्थान के साथ अन्य को लिया कॉम्बिनेशन लिया। हाँ तो द्विसंयोगी कैसे कहलाए, एक हुंड संस्थान और अन्य पांचों ही, पांच कोई भी नहीं, पांचों ही यानी छह का मिलकर ऐसा लेना द्विसंयोगी, क्योंकि हुंड को फिक्स रखा है इसके साथ अन्य पांचों को लेना तो ये एक भंग हुआ बराबर। अब त्रिसंयोगी में एक तो हुंड संस्थान हाँ? हाँ हाँ एक के साथ एक एक लिया, ये छह संयोगी भंग एक हो गया, मैंने जो बताया वो छह संयोगी भंग हुआ द्विस। हाँ बराबर, अभी हर एक के एक एक के साथ उसका एक एक तो पांच हो जाएगी उसके त्रि संयोग, जैसे ए बी सी डी ई, और ये हुंड संसार वाला फिक्स रखा है तो ए के साथ बी के साथ सी के साथ डी के साथ ई के साथ ये पांच हो गए त्रिसंयोगी। अभी इसको तो फिक्स ही रखना है हुंड संयोगी, और रिमेनिंग पांच में से फिर उसके ए बी ए सी इस तरह से, यानी ए का आगे के चार के साथ भंग होगा, बी का आगे के तीन के साथ होगा इस तरह से, सी का आगे के दो के साथ होगा और डी का एक के साथ होगा, तो उसके दस हो जाएंगे। तो ये कैसे निकालना, तो पांच है और उसके द्विसंयोगी निकालना है, तो पांच गुना चार और नीचे एक गुना दो, अभी इसका बहुत लंबा चौड़ा गणित हमने पहले भी देखा था, अभी तो इतना ही समझो कि इसके दस भंग हो जाएंगे द्विसंयोगी त्रिसंयोगी के। हुंड संस्थान फिक्स है, उसके साथ हम देखेंगे ए बी यानी ए के चार, बी के आगे कितने उतने भंग हो गए उसके, क्योंकि ए बी वाला तो पहले हो चुका, ए के आगे चार है, ये पांच है ना, ए के आगे चार है ये चार भंग, बी के आगे तीन है ये तीन, चार तीन आठ, इसके आगे दो है और उसके आगे एक है, दस हो जाएगी। चतुस्संयोगी भंग भी दो दस हो जाते हैं, ये जो वहां लिखा ना पांच गुना चार गुना तीन और नीचे एक गुना दो गुना तीन, ये उसका गणित निकालने का तरीका है, ये हमने पहले देखा था। पंच संयोगी भंग पांच है और छह संयोगी भंग एक है, इसकी सबकी टोटल 31 हो जाती है। ये 31 जो है ये अलग अलग संयोग वाले भंग उन्होंने बता दिया, कॉम्बिनेशन वाले। फिर शंका, अपना पेज 109 है, विकलेंद्रीय जीवों के बंध भी और उदय भी दुस्वर प्रकृति का होता है यह सूत्र में कहा है, किंतु भ्रमर आदि कुछ विकलेंद्रीय जीव सुस्वर वाले भी दिखाई देते हैं, इसलिए यह बात कैसे घटित होती है कि उनके सुस्वर प्रकृति का बंध या उदय नहीं होता है। सबको दुस्वर बता दिया ना उन्होंने। हाँ समाधान, नहीं, क्योंकि भ्रमर आदि में कोकिलाओं के समान मधुर स्वर नहीं पाया जाता। वो भ्रमर का किसी किसी को अच्छा लगता होगा स्वर। शंका, भिन्न रुचि होने से कितने ही जीवों के अमधुर स्वर भी मधुर के समान रुचता है, इसलिए उसके अर्थात भ्रमर के स्वर की मधुरता क्यों नहीं मान ली जाती है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि पुरुषों की इच्छा से वस्तु का परिणमन नहीं पाया जाता। नीम कितने ही जीवों को रुचता है इसलिए वह मधुरता को नहीं प्राप्त हो जाता, क्योंकि वैसा मानने पर, वो वैसा बराबर छपा नहीं है, वैसा मानने पर अव्यवस्था प्राप्त होती है। यहाँ पर तीन जाति, कौन सी तीन जाति देखी हमने, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्य तथा स्थिर शुभ और यशस कीर्ति, इन तीन युगलों के विकल्प से 24 भंग होते हैं, ये हमने पहले ही देखा था। अब ये किसके होता है उसकी बात करेंगे। तिरिक्ख गदिम विकलिंद्य पज्जत्त उज्जोव संयुत्तम बंध मानस तम मिच्छा दिठिस। ये द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय का बंध कौन करेगा, तो जो बिंद्रिय द्विंद्रिय आदि जाति को बांध रहा है पर्याप्त और उद्योत सहित बांध रहा है, परंतु वो कौन से गुणस्थान वाला जीव होगा, मिथ्या दृष्टि, क्यों? हाँ हाँ सम्यक दर्शन की बात तो बाद में, दूसरा तीसरा गुणस्थान वाला क्यों नहीं बनता? हाँ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, ये जो बंध है वो एक मिथ्यात्विक को ही होता है, आगे होता ही नहीं है, उसकी विच्छित्ति हो जाती है वहां पर। देखो जरा, यदि हम विच्छित्ति याद करेंगे ना तो ये बहुत आसान लगेगा, वो प्रकरण पहले लेना चाहिए। मिथ्या तो गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों की विच्छित्ति, विच्छित्ति करता वहां बंध है, आगे ही नहीं है, तो एक है मिथ्या तो प्रकृति, हुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्त सुरपाटिका सहन, एकेंद्रिय स्थावर, और एकेंद्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु। ये जो 16 प्रकृति है, इनकी बंध की विच्छित्ति होती है ना, वो ये प्रकृति आगे कहीं नहीं बनती है। वैसे दूसरे गुणस्थान की है, अनंतानुबंधी 4 है, स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला है, उसके बाद हाँ ये बीच वाले 4 संस्थान लेना, न्यग्रोत परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन, ये संस्थान हुए। संस्थान में सहनन में से भी पहला छोड़ना, नीचे का तो पहले गुणस्थान में छोड़ा था, तो वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और किलित। फिर अभी तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंचायु और उद्योत, उसका बंध। फिर दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, स्त्रीवेद, नीच गोत्र और अप्रशस्त विहाय गति, ये मेन पहले दूसरे की बड़ी लंबी लिस्ट है। तो इनकी बंध की विच्छित्ति होती है यहाँ पर। आठवें गुणस्थान में 36 है, बीच बीच में छोड़ी है, तो तीसरे गुणस्थान में बंध की विच्छित्ति नहीं, इसलिए हमने देखा था तीसरे को भी सत्य, वो बंध समान है ना दोनों ये। देखो अभी यहाँ हम देखेंगे, ये मिथ्या दृष्टि को ही होता है, ये जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय संबंधी है बंध, मिथ्या दृष्टि के ही होता है। वह तृतीय 30 प्रकृति रूप बंध स्थान, विकलेंद्रिय, पर्याप्त और उद्योत नाम कर्म से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। ये उसके स्पेसिफिकेशन पता ना, तिर्यक गति बांध रहा है, उसके साथ साथ विंद्रिय बांध रहा है, पर्याप्त बांध रहा है। पर्याप्त क्यों लिया? क्योंकि अपर्याप्त के साथ वो पैकेज दूसरा आएगा, उसके साथ बंधने वाली प्रकृति। अपर्याप्त नाम कर्म जो बांधता है वो उच्छ्वास को नहीं बांधेगा, विहाय गति को नहीं बांधेगा, वगैरह वगैरह, वो बात आगे आएगी। यह सूत्र सुगम है। अब अगला सूत्र 70 नंबर का, तथ्य इमं पढ़म ऊण तीसाए ठाणम। 29 में से अभी पहला स्थान बताएंगे, 30 में हमने कितने देखे? एक मिथ्या दृष्टि 30 वाला बांधता है पंचेंद्रिय संबंधी, पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योत वाला। एक सासाधन वाला बांधता है पंचेंद्रिय पर्याप्त और उद्योत वाला, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय संबंधी जो है पर्याप्त उद्योत सहित वाला, जो मिथ्या दृष्टि बांधता है। इस तरह से हमने 3 देखे थे, अब 29 वाला स्थान देख रहे हैं। तथ्य इमं पढ़म ऊण तीसाए ठाणम जधा पढ़म तीसाए भंगो। 30 वाला जो था ना वैसे ही इसके भंग है। डिफरेंस कहाँ होगा? वो उद्योत वाला था और ये बिना उद्योत वाला। नवरी उज्जवम बच्चा, परंतु उद्योत को छोड़कर। एदासिम पढ़म ऊण तीसाए पैडिनम एकमी चेवठानम, इनका एक स्थान है। ये कौन सा होगा? ये मिथ्यात्व वाला। 6 संस्थान, 6 सहनन में से एक बांधने वाला है, परंतु यह उद्योत को नहीं बांध रहा है, इसलिए इसका नंबर 29 हो गया। देखो, नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त 5 बंध स्थानों में से यह प्रथम 29 प्रकृति रूप बंध स्थान है। वह किस प्रकार है? वह प्रथम 30 प्रकृति संबंधी बंध स्थान के समान प्रकृति भंग वाला है। विशेषता यह है, यहाँ उद्योत प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। इन प्रथम 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है, इनको बांधने वाले जीव की अपेक्षा वहां एक भाव कहा उसका। 29 ऐसा कहने पर एक कम तीस यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। दो आदि से कम तीस का ग्रहण नहीं होता है। क्या कहना चाहते हैं? उन तीस यानी तीस माइनस समथिंग। तो जब जब उन लगाते हैं तो हम एक ही को माइनस करते हैं, उनतीस, उनचालीस, उनचास या उनसठ। तो उसका अर्थ क्या? एक कम साठ तो उनसठ कहेंगे। वैसे उनतीस में एक कम तीस लेना, कुछ कम तीस यानी दो कम तीस, चार कम तीस, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। रूढ़ी के बल से उसका यही अर्थ है, क्योंकि रूढ़ी के बल का लाभ होने से ऐसा ही अर्थ लिया जाता है। यथा ऐसा पद कहने पर वह किस प्रकार है? ऊपर आए ना जधा करके, जधा पड़मतीसाय बंगो, यथा यानी जिस प्रकार। इस प्रकार शिष्य का पृच्छावचन यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए, शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब अगला सूत्र। तिरिक्ख गदिम पंचिंद्रिय पज्जत संयुक्तम बंध मानसम तम मिच्छा दिठिस्स। यह किसको होता है? पहले वाला, उन्तीस वाला कौन बांधता है? तो मिथ्या दृष्टि बांधता है। कौन से गति का मिथ्या दृष्टि बांध रहा है इसको? हाँ, नरगति वाला बांध रहा है। और आप क्या कहते हैं देवेश भाई? चारों गति वाला बांध रहा है। तिर्यंच गति पंचेंद्रिय कौन बांध रहा है, ऐसी बात चल रही है। ये बंध किसका हो रहा है? तिर्यंच गति संबंधी बंध रहा है। कैसा है वो? तिर्यंच गति पंचेंद्रिय जाति पर्याप्त जीव है ना। तो कौन कौन जीव बांध सकते हैं? चारों गति के बांध सकते हैं। देव भी बांध सकते हैं, नारकी भी बांध सकते हैं, भले उद्योत सहित वाला हो गया, उद्योत रहित वाला हो, कोई भी बांध सकता है उसको। किस गति संबंधी बंध है? तो तिर्यंच गति संबंधी बंध है। कौन बांध रहा है ऐसा मेरा प्रश्न था। तो चारों ही गति वाले बांध सकेंगे ना इसको। आगे चलकर जब हम एक इंद्रिय की बात करेंगे या दो इंद्रिय की करेंगे तो नारकी या देव तो द्विंद्रिय का बंध नहीं करेंगे, क्योंकि नारकी भी पंचेंद्रिय का ही बंध करते हैं, देव भी एक इंद्रिय को छोड़कर, नीचे के देव एक इंद्रिय का भी बंध कर सकते हैं, परंतु द्विंद्रिय तीन्द्रिय का कोई करते नहीं है। देखो तम इच्छा दिखी से नीचे उसका अर्थ है इकहत्तर का। वह प्रथम उन्तीस प्रकृति रूप बंध स्थान पंचेंद्रिय और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। यानी ये बंध कौन करेगा? तो चारों गति का मिथ्या दृष्टि कोई भी कर सकता है। यह पहले कहे हुए बंध स्थान के स्वामित्व का सूत्र सुगम है, अतएव यहां पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कहा जाता है। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे। अभी 29 वाला ही दूसरा बंध स्थान बताएं, वैसे जैसे हमने 30 वाला दूसरा देखा था। 30 वाले दूसरे में कौन सा देखा था? सासादन वाला जो बांधता है, पांच संस्थान पांच सहनन में से एक, वैसे अब यहां भी बताएंगे। तथ्य इमं विदीय एगुण तीसाय ठाणम जधा विदीय तीसाय भंगो नवरी उज्जवम वच्च उद्योत को छोड़कर एदासिम विदीय उनतीसाय पैडिनम एकम्मी चेव ठाणम। नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त पांच बंध स्थानों में यह द्वितीय 29 प्रकृति संबंधी बंध स्थान है। वह किस प्रकार है? वह द्वितीय 30 प्रकृति संबंधी बंध स्थान के समान प्रकृति भंग वाला है। विशेषता यह है, यहां उद्योत प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। 30 में से वह उसको एक बाद करो उद्योत को, बाकी सब समान है। इन द्वितीय 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है, क्योंकि 29 को बांधने वाला भाव ऐसा उधार लेना, तो उसी भाव में वो जीव है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि अनंतर ही इसका अर्थ कहा जा चुका है, पहले उसका अर्थ बताया। 73 किसमें पढ़े? पहले में जो है वो छह संस्थान छह सहनन में से एक लेना, जो मिथ्या दृष्टि को होता है बंध। और जो द्वितीय स्थान है वो पांच संस्थान और पांच सहनन में से एक लेना, जो सासादन वाले को होता है। हाँ, 72 वाला जो है वो समान 30 वाला द्वितीय निकालना। देखो, हाँ, जैसे 30 वाले में हमने वहां तो नाम लेकर सब समझाए थे, कौन से पांच में से, नीचे के हीन संस्थान सहनन को छोड़कर, हुंडक संस्थान और असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन को छोड़कर, जो रिमेनिंग पांच पांच है उनमें से एक एक को बांधने वाला है। जाति तो पंचेंद्रिय ही है, पहले भी, पहले भंग पहला जो है ना उसमें भी पंचेंद्रिय पर्याप्त और उद्योत वाला लिया था, यहाँ भी पंचेंद्रिय पर्याप्त और उद्योत वाला ही है। सॉरी, उद्योत उद्योत छोड़ा है, परंतु पांच पांच में से एक लेना उसको। हाँ, ये लिखा ना अनंतर, इसका अर्थ कहा जो कहे, अभी अभी पहले ही उसका अर्थ बताया था। अभी 73 नंबर, तिरिक्ख गदिम पंचेंद्रिय पज्जत संयुत्तम बंधमानस तम शासन सम्मादिष्ठिस। ये जो अभी हमने भंग देखा वो सासादन वाले को होता है। यह द्वितीय 29 प्रकृति रूप बंध स्थान पंचेंद्रिय और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त तिरिक्ख गति को बांधने वाले सासादन सम्यक दृष्टि जीव के होता है। यह स्वामित्व संबंधी सूत्र सुगम है। अब अगला सूत्र 74 नंबर का, तथ्य इमं तदीय 29 ठाणम। अभी तीसरा 29वां स्थान वो कौन सा होगा, हम क्या अनुमान लगा सकते? हाँ, विकलत्रय संबंधी बंध करने वाला, द्विंद्रिय तीन्द्रिय या चतुरिंद्रिय जाति को बांधने वाला, यानी तिरंच गति द्विंद्रियादि जाति। अभी उद्योत नहीं लेना, पर्याप्त है वो तो, बाकी तो सभी वैसी लिस्ट रहेगी उनकी। देखो तथ्य, हाँ, कहाँ गया वो, 74 का ऊपर पढ़ रहे हैं। तथ्य इमं तदीय 29 ठाणम जधा तदीय 30 भंगो। तृतीय 30वां जो भंग है ना, 30 वाले का, वैसे यहाँ पर भी समझना, एक्सेप्ट उद्योत, नवरी लिखा ना, नवरी उद्योगम वज्ज, परंतु उद्योत को छोड़कर। एदासिम तदीय 29 पैडिनम एकमी चेवठानम, अभी उसी का अर्थ नीचे लिखा है। नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त पांच बंध स्थानों में यह तृतीय 29 प्रकृति रूप बंध स्थान है। ये तिर्यंच गति संबंधी ने, तिर्यंच गति नाम कर्म को बांधने वाले की बात है, वो तिर्यंच है ऐसी बात नहीं है। वो जीव जो बांध रहा है वो चारों गति का हो सकता है, वो तिर्यंच गति को बांध रहा है उसकी बात है यहाँ। वह किस प्रकार है? वह तृतीय 30 प्रकृति संबंधी बंध स्थान के समान प्रकृति भंग वाला है। विशेषता यह है, यहाँ उद्योत प्रकृति को छोड़ देना चाहिए। 30 में से एक माइनस करना उद्योत और 29 रह जाएगी। इन तृतीय 29 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। यह सूत्र भी सुगम है। अब ये किसको होता है वो ऊपर बताएंगे। फिर 75 में, तिरिक्ख गदिम बिगलिंद्रिय पज्जत संयुत्तम बंधमानस तम मिथ्या दृष्टिस्स। ये तो विकलेंद्रिय संबंधी बंध तो मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। वह तृतीय 29 प्रकृति रूप बंध स्थान विकलेंद्रिय और पर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। यह सूत्र सुगम है। तो देव और नार की इसका बंद नहीं करेंगे ना, द्वितीय द्विंद्रिय का, तीन्द्रिय का, चतुरिंद्रिय का, ना देव करेंगे ना नार की करेंगे, तो कौन रह गए? मनुष्य और तिरंज रह गए, वे करेंगे। यह सूत्र सुगम है, और वो भी मिथ्या दृष्टि हो, सासादन वाले को उसमें से बात किया उन्होंने, मिथ्या दृष्टि को लिया। अब 76 नंबर, ये 26वां स्थान बताएंगे। 30 के साथ और 29 के समझ में है ना, सेम है, उद्योत है एक जगह एक नहीं है। कौन कौन सी वो बांध रहे हैं, तिर्यंच गति, पंचेंद्रिय जाति, पर्याप्त और उद्योत, वो 30 वाला, और बिना उद्योत 29 वाला। बाकी प्रकृतियों की लंबी लिस्ट है, वो हमने देखी थी। अब 26 वाला बताएंगे। तथ्य इमम 26 आए ठाणम, तिरिक्ख गति ए इंद्रिय जाति, ओरालिय तेया कम्मय्य शरीरम, हुंड संठानम, वर्ण गंध रस फासम, तिरिक्ख गति पावगाणु पूवी, अगुरु अलहु उवघाद परघात उत्साहम, आदा उज्जोवनाणम एकदरम। यानी आताप या उद्योत जो है इसमें से एक, ये 26 वाला स्थान है ना, इसलिए थावर बादर पज्जत पत्ते शरीरम थिर अथिराणाम एकदरम। खाली स्थिर और अस्थिर में से एक लिया ना, बाकी स्थावर बादर पर्याप्त प्रत्येक को तो लेना ही, सभी लेना। हाँ, सुह असुहाणम एक कदरम, उसमें से एक। देखो स्थिर अस्थिर में से एक, सूक्ष्म वाला यहाँ नहीं। अच्छा हाँ, पर्याप्त बादर पर्याप्त तो कोई लिया है नहीं। देखो क्यों सूक्ष्म को क्यों नहीं, आप ही बताना भी। हाँ देखो, आतप और उद्योत ये प्रकृतियां पर्याप्त के साथ ही बनती है। जो पर्याप्त नाम कर्मों को बांध रहा है ना, एकेंद्रिय पर्याप्त को, क्योंकि उसका उदय एकेंद्रिय पर्याप्त में ही होता है। एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों में उद्योत या आतप प्रकृति का उदय नहीं पाया जाता, और सूक्ष्म में भी उसका उदय नहीं है, इसलिए यहां बादर ही लेना। बादर में यहां ऑप्शन नहीं दिए उन्होंने, उसके लिए एक कदर नहीं लगाया। जो एकेंद्रिय है, पर्याप्त है, स्थावर तो है ही, बादर भी है, पर्याप्त भी है, प्रत्येक शरीर भी है, क्योंकि साधारण शरीर वालों को इसका उदय नहीं होता, निगोद वालों को। कौन मानेगा ने किसके साथ बंदी है, पर्याप्त के साथ ही, क्योंकि उन्हीं के उसका उदय पाया जाता है। ये जो पैकेज है वो उसका ही उदय होगा ना आगे आगे चलकर। तो एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों में ही आतप या उद्योत प्रकृति का उदय पाया जाता है, इसलिए उसका बंद भी उसके के साथ होगा। एकेंद्रिय पर्याप्त बादर, वो भी प्रत्येक शरीर वाला लेना। प्रत्येक वनस्पति में तो उद्योत का ये उदय हो सकता है आतप का, परंतु अपर्याप्तों में नहीं होता, निगोद में नहीं होता, इसलिए ये प्रकृति लेनी फिक्स। ये शायद ऊपर रह गया होगा, इसलिए वो ब्रैकेट क्यों डाला है पता नहीं, ब्रैकेट की वजह से जरूरत नहीं थी वहां। मूल में शायद लिखना रह गया होगा तो इसलिए ब्रैकेट डालकर उन्होंने लिखा होगा, पता नहीं। तो आतप या उद्योत इसमें तो एक कदरम लिखा उन्होंने, हा? ब्रैकेट में जो थावर बादर प्रजत्त प्रत्यय शरीर ये तो होते ही है। अब एक कदरम खाली स्थिर और अथिर में से एक, उसके लिए एक कदरम लगाए। उसके बाद सुहा असुनाणम एक कदरम, फिर दुहव अनादेजम जसकित्य अजसकित्यनम एक कदरम, यानी दुर्भग और अनादेय लिए, उसमें भी ऑप्शन नहीं है। यश कीर्ति या अयश कीर्ति, कल बात आई थी ना, एक इंद्रियों के भी ये पाई जाती है, यश कीर्ति अयश कीर्ति। निमिन नामम, ये निर्माण भी है। देखिए आपका प्रश्न था ना, निर्माण होता है कि नहीं, तो सबको है, सबके साथ निर्माण नाम कर्म होगा। एदासिम 26 आय पैडिनम एकमी चेवठाणम, इसी का अर्थ नीचे देते हैं। देखो नाम कर्म के तिर्यक गति संबंधी उक्त पांच बंद स्थानों में यह 26 प्रकृतिक बंद स्थान है। हमने अभी तक 30 प्रकृतिक देखा, 29 प्रकृतिक देखा, अब ये 26 वाला है और आगे जाके 25 और 23 वाला देखेंगे। ये 26 वाले कौन सा है? एक केंद्रीय है, पर्याप्त है और आतप या उद्योत में से एक है। अब उसके साथ वो पर्याप्त के साथ वो प्रत्येक शरीर ही होगा वगैरह, बादर होगा, वो सब बातें आ गई। तो ये उसके बंद स्थान कौन कौन से है वो बताते हैं। तिर्यक गति, एकेंद्रीय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, कुंड संस्थान। संस्थान कौन सा लिया और सहनन कौन सा लिया? एकेंद्रियों की सहनन नहीं होता, सहनन यानी हड्डियों का जो कुछ ढांचा है उनका, जो कुछ मजबूती है उसकी, तो ना ही एकेंद्रियों में सहनन होता है और ना ही देव और नारकी, यानी जो देव गति नरक गति संबंधी हमने जो भंग देखेंगे या देखा है नरक गति का 28 का, उसमें सहनन नहीं था कोई। तो हुंड संस्थान, वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्यक गति प्रायोज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु उपघात, परघात, उच्छ्वास, ये परघात का र नहीं आया बराबर, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, इन दोनों में से कोई एक, दोनों तो बंधेगी नहीं एट अ टाइम, कोई एक बंधेगी। देखिए ये आतप प्रकृति है वो मात्र एकेंद्रियों में ही पाई जाती है, तो आतप का बंध हमने एकेंद्रिय के साथ ही देखा अभी, परंतु उद्योत का बंध एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के तिर्यंचों के होता है, उद्योत मनुष्य के साथ नहीं लगेगा, तिर्यंच गति के साथ ही उद्योत प्रकृति का बंध होगा किसी किसी के, है ना? एकेंद्रियों में भी उद्योत पाया जाता है, कोई पृथ्वी कायिकों में वगैरह या कोई वनस्पति कायिकों में। आतप और उद्योत इन दोनों में से कोई एक, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक, दुर्भग, अनादेय, यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति इन दोनों में से कोई एक, तथा निर्माण नाम कर्म, इन 26 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। अब यहाँ आतप या उद्योत ये कॉम्बिनेशन होगा, उसके साथ स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ, यशस कीर्ति या अयशस कीर्ति, ऐसे भंग हो गए उसके। शंका, एकेंद्रियों के जीवों के अंगोपांग क्यों नहीं बतलाए? क्योंकि अन्यत्र हमने औदारिक अंगोपांग ऐसा देखा था द्विंद्रिय में भी और पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों में, परंतु यहाँ उसको नहीं लिया है, अंगोपांग को नहीं, क्योंकि उनके पैर, हाथ, नितंब, पीठ, सिर और उर यानी हृदय का अभाव होने से अंगोपांग नहीं होते। अंग और उपांग, मुख्य अवयव और उसके और छोटे अवयव, सहनन अलग और अंगोपांग अलग। देवों में सहनन नहीं है परंतु अंगोपांग है, हाँ, नारकियों में सहनन नहीं है परंतु अंगोपांग है, उनके हाथ पैर उंगलियां वो है ना, मस्तक है, हाथ पैर है, बॉडी ट्रंक है, यानी छाती है, पेट है, वो सब अवयव वहाँ है, यानी अंगोपांग, वैकिरेक अंगोपांग तो पाया जाता है, परंतु एकेंद्रियों के साथ औदारिक शरीर नाम कर्म लिया, औदारिक अंगोपांग नहीं लिया है, तो एकेंद्रियों में अंगोपांग नाम कर्म नहीं पाया जाता। अंगोपांग भी नहीं है, वो स्वर भी नहीं है, हाँ, व्याय गति भी नहीं है। देखो फिर शंका, एकेंद्रिय छह संस्थान क्यों नहीं बतलाए? एकेंद्रिय में चाहिए ना कि एकेंद्रियों के छह चाहिए, लाइट है मगर एकेंद्रिय लिखा है, एकेंद्रिय के या एकेंद्रियों में या ऐसा चाहिए कुछ। शंका क्या पूछी है? एकेंद्रिय में ऐसा लिखना चाहिए ना, या एकेंद्रिय के चाहिए, ऊपर जैसे एक इंद्रियों के अंगोपांग क्यों नहीं बतलाया, ऐसा है ना, वैसे यहाँ भी एक इंद्रियों के 6 संस्थान क्यों नहीं बतलाए? उसका समझ नहीं, क्योंकि प्रत्येक अवयव में प्ररूपित लक्षण वाले 5 संस्थानों को समूह रूप से धारण करने वाले एक इंद्रियों के पृथक पृथक संस्थानों के अस्तित्व का विरोध है। यानी पहले हमने जो समूह रूप से जो देखा था ना, प्ररूपित यानी बताया हुआ कॉम्बिनेशन वाला, वैसे कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन, कोई फिक्स आकार नहीं उनका, वेरिएबल है, तो उसको हुंड संस्थान में ले लेते हैं। यहाँ पर आतप, स्थिर, शुभ और यशस कीर्ति और इनके अपोजिट है ना, इन 4 युगलों के विकल्प से ये 2×2×2×2 16 भंग होते हैं। अब वह किसको होता है उसकी बात करेंगे। तीर्ख गदिम ए इंद्रिय बादर पज्जत आदा उज्जवणाम एकदर संयुत्तम बंध मानस तम मिच्छा दिठिस। ये बंध तो मिथ्या दृष्टि करेगा, क्योंकि एक इंद्रिय की बात चल रही ना, तो ये बंध किसके होता है, तो मिथ्या दृष्टि के होता है। वह 26 प्राकृतिक बंध स्थान एक इंद्रिय जाति बादर पर्याप्त वो प्र का प करना आतप और उद्योत इन दोनों में से किसी एक से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। अब ये एकेंद्रीय संबंधी बंद करने वाला जीव कौन से गति का हो सकता है? हाँ हाँ, नरक गति वाला नहीं बांधेगा, स्वर्ग में से भी भवनत्रिक के या सौधर्म ईशान वाले इसका बंद कर सकते हैं। मिथ्या दृष्टि सौधर्म ईशान के ऊपर के एकेंद्रीय का बंद नहीं करेंगे, और बहुनत्रिक के जीवों को भी इसका बंध हो सकता है। यानी वहाँ सागरों की या पल्लियों की आयु समाप्त करके यहाँ एक केंद्रियों में छड़ाला में पड़ा ना, क्या थी चय थावर तन धरे, ये थावर तन धारण करता है। हमने पढ़ा है ना इसमें कि 6 महीने पहले उनको पता चलता है और फिर बहुत शोक करते हैं कोई जीव, अत्यंत संकलेश परिणाम, तो एक केंद्रीय का बंध करेंगे, मिथ्या दृष्टि है। हम भी अभी कैंसर अपना रस मान लेते हुआ और डायग्नोस हुआ, तो कोई कोई लोग देखते हैं कितना संकलेश परिणाम करेंगे, कितना रोएंगे धोएंगे जो कुछ होगा, तो कैसे कैसे बंद हो गया। अभी यहाँ हम देखते हैं एक केंद्रीय कोई अपर्याप्त में जाएंगे, कोई सूक्ष्म में चले जाएंगे। हाँ नहीं बांधते, क्या पढ़ा था तिर्यंच गति का तो करते हैं, एक केंद्रीय का नहीं, क्योंकि वो हमने जो सदर चौक वाली बात की थी, शतार सहस्रार तक के जीव तिर्यंच गति का है, वो पंचेंद्रिय का है। एक केंद्रीय का हमने यहाँ भी पहले पढ़ा था, लेके आना कल। हाँ करणानि योग के शास्त्र में है क्योंकि करणानियों के हमने पहले भी देखा था कौन से गति का जीव कितनी प्रकृतियों का बंध करता है, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। आप कर्मकांड निकाल के देखना, आप स्वयं अपना समाधान करना, ऐसा नहीं मेरे शब्द पर भी भरोसा नहीं करना, आगम में निकाल कर स्वयं उसका टैली करना उसकी बात। मिथ्यादृष्टि जीव के होता है क्योंकि अन्य गुणस्थानवर्ती जीवों के एकेंद्रिय जाति का बंध नहीं होता। यानी एकेंद्रिय का द्विंद्रिय का तीनिंद्रिय का चतुरिंद्रिय का बंध करने वाला मिथ्या दृष्टि ही है, ऊपर के गुणस्थानों में उसका बंध नहीं होता। अब आगे तथ्य इमम पढ़म पणुविसाए ठाणम। अभी 25 वाला बता रहे हैं, 26 वाले हमने एकेंद्रिय पर्याप्त और वो आतप या उद्योत वाला देखा था, अभी 25 वाला बता रहे। तिरिक्ख गदी ए इंद्रिय जादी ओरालिय तेजा कम्मय शरीरम कुंड संठानम वर्ण गंध रस फासम तिरिक्ख गदि पावगाणु पूवी अगरु अलहु उघाद परघाद उत्साह थावरम बादर सुहमाणम एकदरम बादर या सूक्ष्म में से कोई एक क्या क्या
उसने गर्भज बताया था गर्भज तो पंचेंद्रियों में होता है और मेरी भूल हो गई बताने कल जो मैंने पढ़ा ना
कल क्या पढ़ा था आपने
अदा सागर वाला इतनी बड़ी आयु पास कर गया तीर्यंचगति बांध के ऐसे दिल्ली या ऐसा कोई पेड़ में
अच्छा तीर्यंचगति में आता इतना ही लिखा एक इंद्रिय की बात नहीं थी अच्छा ठीक है तो अभी का अभी समाधान हो गया अपना है ना हाँ देखो यहाँ कहाँ पर आए थे हम बादर सुहमाणम एकदरम बादर या सूक्ष्म अभी 25 वाले में आतप और उद्योत के साथ बादर ही बंधेगा वहाँ बादर या सूक्ष्म का ऑप्शन नहीं था बराबर पज्जतम ये पर्याप्त वाला भंग चल रहा है बादर में भी पर्याप्त हो सकते हैं सूक्ष्म में भी पर्याप्त होते तो पर्याप्त वाला अपर्याप्त वाला अलग आगे 23 वाला भंग अलग कहेंगे पत्ते का साधारण शरीराणम एक कदरम या प्रत्येक शरीर ही होगा या साधारण शरीर ही होगा ये प्रत्येक शरीर ही कौन कौन हो सकता है स्थावर तो 5 प्रकार के हैं ना 5 प्रकार के स्थावर है कौन कौन से पृथ्वी का एक जल का एक वायु का एक अग्नि का एक वनस्पति का एक ये 5 प्रकार के तो उसमें प्रत्येक शरीर वाले कौन कौन से और साधारण शरीर वाले कौन कौन से हैं हाँ साधारण और प्रत्येक ऐसा भेद दोनों वनस्पति कायिक में ही होता है बाकी सभी प्रत्येक शरीर वाले ही है हम आप कौन से हैं प्रत्येक है ना अन्य चार और बाकी सभी प्रत्येक शरीर वाले हैं उसके सामने लगाना नहीं पड़ता प्रत्येक शरीर वाले जैसे हम बादर के सामने ये साधारण के सामने लगाएंगे बाकी सभी प्रत्येक शरीर वाले तो यहाँ या प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर दो में से एक बंद किसका चल रहा है उसकी बात चल रही है एक केंद्रीय का बादर या सूक्ष्म प्रत्येक या साधारण एक कदरम थिरा अथिराणम एक कदरम सुह असुहाणम एक कदरम दुहव अनादेज्यम इसमें कोई ऑप्शन नहीं है दुर्भग है अनादेय है जसकित्ति अजसकित्तिनम एक कदरम और निमिन नामम एदासिम पढ़म पणु विसाए पयड़िनम एक कमी चेवट ठाणम अब उसी का अर्थ नीचे देखते हैं देखो नाम कर्म के तिर्य गति संबंधी उक्त 5 बंध स्थानों में थानों में यह प्रथम 25 प्रकृतिक बंध स्थान है प्रथम लिखा उसमें भी भेद करेंगे तिर्यक गति एकेंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर हुंड संस्थान वर्ण गंध रस स्पर्श तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास स्थावर बादर और सूक्ष्म इन दोनों में से कोई एक देखो अभी यहां एक ऑप्शन आ गया फिर पर्याप्त प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर इन दोनों में से कोई एक स्थिर और अस्थिर इन दोनों में से कोई एक शुभ और अशुभ इन दोनों में से कोई एक दुर्भग अनादेय यशस कीर्ति यशस कीर्ति इन दोनों में से कोई एक और निर्माण नाम कर्म इन प्रथम 25 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है फिर शंका अगुरु लघुत्व नाम का गुण सर्व जीवों के पारिणामिक है क्योंकि अशेष कर्मों से रहित सिद्धों में भी उसका सद्भाव पाया जाता है इसलिए अगुरु लघु नाम कर्म का कोई फल न होने से उसका अभाव मानना चाहिए ये अगुरु लघु नाम कर्म और अगुरु लघु गुण जो सिद्धों का जो है उसमें ये घोटाला हो रहा है इसका समाधान यहाँ पर उक्त शंका का परिहार करते हैं यह उपर्युक्त दोष तब प्राप्त होता यदि अगुरु लघु नाम कर्म जीव विपाकी होता, वो कैसा है? पुद्गल विपाकी है। अगुरु लघु नाम कर्म किसमें उसका फल मिलता है? शरीर बहुत भारी या बहुत हल्का नहीं होता, ये उसका फल है अगुरु अलघु, बराबर। और वो जो गुण जो है वो तो अलग है, उसमें तो जो कुछ रेंज है उसकी, जो अविभाग प्रतिच्छेदों की, उसके बारे में वो षडगुण हानि वृद्धि उसमें भी वो काम करता है, वो अगुरु लघु गुण अलग है। देखो, परंतु यह कर्म पुद्गल विपाकी है, क्योंकि गुरु स्पर्श वाले ने हेवी अनंतानंत पुद्गल वर्गणाओं के द्वारा आरब्ध शरीर के अगुरु लघुता की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो गुरु भार वाले शरीर से संयुक्त जीव, यह जीव उठने के लिए भी नहीं समर्थ होगा। गुरु भार है ना, बहुत हेवी शरीर वाला जीव उठ भी नहीं सकता था, इसलिए वो अगुरु और अलघु कहा उसका। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि शरीर के केवल हल्कापन और केवल भारीपन पाया नहीं जाता, न बिल्कुल हल्का है और न एकदम भारी है, इसलिए अगुरु और अलघु कहा उसको। आरब्ध है ने वर्गणों के द्वारा प्राप्त या बना हुआ, आरब्ध है ने उससे बना हुआ। शेष सूत्रार्थ सुगम है, यहां पर वो प नहीं आया उसमें, यहाँ पर बादर प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ और यशस कीर्ति, इन पांच युगलों के विकल्प से वो 32 में से तीन भी नहीं आया। बत्तीस भंग होते हैं, ये बादर या सूक्ष्म हमने देखा था ना, बादर या सूक्ष्म, प्रत्येक या साधारण, फिर स्थिर अस्थिर में से एक, शुभ या अशुभ, यशस कीर्ति या यशस की, ये पांच में से ये जो कोई कॉम्बिनेशन होगा वो। अब ये किसके होता है उसकी बात करेंगे। ये ब्रैकेट में 32 लिखना रह गया, वो आप नीचे आ गए, अभी वो ऊपर है। हाँ, यहाँ पर रह गया वहाँ, यहाँ पर। अब देखिए ऊपर 79 हम पढ़ रहे, तिरिक्ख गदिम एइंद्रिय पज्जत्त बादर सुहमाणम एकदरम संयुत्तम बंधमानस तम मिथ्या दिष्टिस्स। यह किसके होता है? तो मिथ्या दृष्टि को होता है। वह प्रथम 25 प्रकृति रूप बंध स्थान, और रूप वाला प भी बराबर क्लियर करना, एकेंद्रीय जाति पर्याप्त बादर और सूक्ष्म, इन दोनों में से किसी एक से संयुक्त तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्यादृष्टि जीव के होता है, क्योंकि उपरिम गुणस्थानवर्ती जीवों के एकेंद्रीय जाति बादर और सूक्ष्म इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब आगे ये 25 संबंधी अभी दूसरा कोई ऑप्शन बताएंगे। पहले कौन सा देखा हमने? एकेंद्रिय में बादर या सूक्ष्म वाला। अब आगे दूसरा देखते हैं, परंतु वो पर्याप्त था, एकेंद्रिय पर्याप्त बादर या सूक्ष्म। अब जो अलग बात देखेंगे 25 वाला, तथ्य इमं विदीय पणु विसाय ठाणम, इसमें किस किस को लेना? देखिए, तिरिक्ख गदी बेइंद्रिय तीन्द्रिय चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय चतुर्णम जातिनम एकदरम, पंचेंद्रिय तक को लिया। अभी किसको होगा ये थोड़ा सोचेंगे ना, 25 वाला है और द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के है। नहीं नहीं, कौन बांधेगा उसकी बात नहीं है, ये बांध रहे तो उसकी 25 प्रकृतियां कैसे हो गई? पहले तो हमने दो इंद्रिय तीन इंद्रिय और पंचेंद्रिय तक के 30 और 29 का देखा था, हाँ वो अपर्याप्त तो होगा, बराबर है। तो अपर्याप्त तो होगा तो विशिष्ट प्रकृतियों का बंध यहाँ नहीं होगा, उच्छ्वास नहीं होगा, अपर्याप्त है ना। हाँ तो उसके साथ आतप उद्योग भी नहीं होगा, व्याय गति भी नहीं होगी, हाँ स्वर नहीं होगा, हाँ और उपघात में से भी मेरे ख्याल से परघात, उच्च परघात में से कुछ नहीं होगा, परघात नहीं होगा शायद, परघात और उच्छ्वास दो नहीं होगे, व्याय गति नहीं होगा और स्वर नहीं होगा। देखो अभी हम देखेंगे इसको, हाँ इसको पढ़ेंगे। देखो तो पंचेंद्रिय उसमें से एक जादिनम एकद्रम, वहां तक हमने पढ़ा था। ओरालिय तेजा कम्मय शरीरम कुंड संठानम, ओरालिय शरीर अंगोभंगम असंपत्त सेवठ शरीर संगड़म, वर्ण गंध उद्धाया के बराबर रसफासम, तिरिख गदि पावगाणु पूवी अगरु अगलहु उवगाद। देखो परघात और उच्छ्वास नहीं लिया है, तस बादर अपजत्त, ये अपर्याप्त वाले का भंग है। पत्तेय शरीर, ये बादर वाला अपर्याप्त लिया है, क्योंकि दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की बात हम कर रहे हैं। पत्तेय शरीर वहां भी ये दो इंद्रिय से, इसलिए प्रत्येक शरीर लिया। अथिर अशुभ दुहव अनादेज्य अजस कित्ति निमिणम, ये सभी अप्रशस्त प्रकृतियां ही है, अपर्याप्त जीव है, उसके साथ ये यशस कीर्ति वगैरह कुछ नहीं लिया, सभी अथिर लिया, अशुभ लिया, दुर्भग लिया, अनादेय लिया, अयशस कीर्ति लिया, इसमें ना सुस्वर लिया ना दुस्वर लिया, अपर्याप्त जीव है ना। तो उसका उदय कब होता है, तो भाषा पर्याप्ति के बाद होता है पूर्ण होने पर, इसलिए यहाँ न परघात है, न उच्छ्वास है, न विहाय गति है और न ही स्वर नाम कर्म है, इसलिए वो कम हो गए। आतप उद्योग तो होता ही नहीं उसके साथ, इसलिए वो 29 में से 4 कम करना 25 हो गए। अब इसी कारण से नीचे पढ़ते, फिर नाम कर्म के तिर्य गति संबंधी उक्त 5 बंद स्थानों में से यह द्वितीय 25 प्रकृति रूप बंद स्थान है। तिर्य गति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति, इन 4 जातियों में से कोई एक ही बंदेगी ना एटेट। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, कुंड संस्थान, ये अपर्याप्त जीव है तो उसका कोई विशिष्ट संस्थान नहीं है, तो हुंड संस्थान बताए। औदारिक शरीर अंगोपांग, असंप्राप्ता सुरुपाटिका सहनन, शरीर सहनन, द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय है तो उसके साथ इसका तिर्य गति है ना, तो सहनन ले लिया है। वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी अगुरु लघु उपघात, त्रस बादर अपर्याप्त और प्रत्येक शरीर, अस्थिर अशुभ दुर्भग अनादेय अयशस कीर्ति और निर्माण नाम कर्म, इन द्वितीय 25 प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान है। देखो यहाँ लिखा है नीचे, परघात उच्छ्वास विहाय गति और स्वर नाम कर्म, इन प्रकृतियों का इस बंध स्थान में बंध नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियों के बंध का अपर्याप्त प्रकृति के बंध के साथ विरोध है। अपर्याप्त बांध रहा है तो उसके साथ इसका बंध नहीं होगा, क्योंकि अपर्याप्त जीवों में इसका उदय भी नहीं पाया जाता, तो जब जब अपर्याप्त का बंध हो रहा है उसके साथ साथ इसका बंध नहीं होगा। तथा अपर्याप्त काल में इन परघात आदि प्रकृतियों का उदय नहीं पाया जाता। जिन प्रकृतियों का जहां पर उदय होता है उन प्रकृतियों का ही वहां पर बंध होता है। हाँ, नाम कर्म में यानी किसके साथ उसका उदय होता है उसकी बात है, बांधने वाले की बात नहीं है। उक्त कथन में स्थिर और शुभ प्रकृतियों के द्वारा अनेकांत दोष नहीं आता है, क्योंकि अध्रुव बंधी शुभ और अशुभ प्रकृतियों का एक साथ बंध नहीं होता। अध्रुवबंदी है वो, अध्रुवबंदी क्यों कहा, या तो स्थिर का या अस्थिर का होता है, इसलिए अध्रुवबंदी कहा। परंतु वो तो उदय के साथ, उसको ध्रुवोदयी कहेंगे, स्थिर अस्थिर का एक साथ उदय होगा, परंतु उसमें ये दोष नहीं आता है। उन्होंने कहा ना, एक साथ उसका उदय नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है उसका। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहाँ पर द्विंद्रिय आदि चार जातियों के विकल्प से चार भंग होते, या द्विंद्रिय या त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय अपर्याप्त की बात चल रही है, इसलिए उसके चार भंग हो। अभी 81 वाला ऊपर, तिरिक्ष गदिम तस अपजत्त संयुत्तम बंध मानस, वो घ हुआ, ध करना उसका, बंध मानस तम मिच्छा दिठिस, ये बंध कौन करता है, तो अपर्याप्त का बंध है तो मिथ्या दृष्टि करेगा, क्योंकि सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण आदि का बंध करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, बाद में उसके बंध की विच्छित्ति हो जाती है। तो अपर्याप्त वाला ये बंध है, ये मिथ्या दृष्टि करेगा। वह द्वितीय 25 प्रकृति बंध स्थान त्रस और अपर्याप्त नाम कर्म से संयुक्त, वो यू करना बराबर, तिर्यक गति को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। तो देवगति वाले भी ये अपर्याप्त का बंध नहीं करेंगे, उनको सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त नहीं बनती है। तो या तो मनुष्य करेगा या तीरहिंस करेगा, क्या ना? हाँ, कौन कौन, देव नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, साधारण भी नहीं और अपर्याप्त भी नहीं। एकेंद्रिय बादर पर्याप्त का बंध कर सकते हैं देवगति वाले, वो भी नीचे वाले देव, हमने देखा था भवनत्रिक और सौधर्मा देव। हाँ, पहले next, next कौन सा, हाँ हाँ, देव में से निकल कर तो देवो में इतना आयु वहाँ बिताया और अभी वो छोड़ने का टाइम आया, ऐसा शोकाकुल हो गया कि एकेंद्रिय का बंद कर दिया। नहीं, देव में एकेंद्रिय की कहाँ बात है, देव गति का जीव मर कर एकेंद्रिय में जन्म लेगा, यानी एकेंद्रिय वाला देव में नहीं जाता। एकेंद्रिय जीवों को या द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रिय जीवों को देव का या नारकी का बंध ही नहीं होता, देवगति या नारकी गति का बंध नहीं होता। पंचेंद्रिय जीव ही, वो भी मनुष्य तीरियंच, देवगति या नरक गति बांधेगा, उसमें भी असंगी को भी हो सकता है, वो असंगी भी मरकर वहाँ तो भवनत्रिक में जा सकता है या नरक, पहले नरक में भी जा सकता है, नीचे के नरक में नहीं। हाँ, कर सकता है, आयु तो उसकी अंतिम 6 महीने में बंधेगी। हाँ, वो भवनत्रिक वालों के। अभी जब बहुत संकलेश करेगा तभी होगा ना, ये बात तो उसके साथ है ही। एक केंद्रीय संबंधी बंध कब होगा, तो बहुत संकलेश परिणाम में होगा।
उनको अति दुख होता है कि अरे इतना वैभव छोड़ के मुझे जाना है। अब वह देवगति के जीवों को भी वैभव छोड़ने का दुख है, तो मनुष्य गति वाले उनके दुख जो होगा वैभव छोड़ने का, देखो आपने सुना होगा कि स्वामी जी को एक भाई अपने, एक समझो 30-35 साल पहले 40 लाख रुपए का उसका घर था, घर खाली, उसका 4 करोड़ हो जाएगा, जास्ती होएगा। तो वो दिखाया, ये है इधर संगम रह, ये लगाया वो लगाया सब, ये है तो केवु लाइगू, ऐसा उन्होंने स्वामी जी से पूछा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, आ छोड़ती वक्ते तुमने बहु आकरु थशे, यानी वो एकेंद्री में जाएगा, ऐसा बोले ये बिल्कुल इन्फरेंस हम निकालते हैं, उनका ऐसा कहना था कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा है ना कि जब इन बातों से मोह छुटता नहीं है तो ऐसे तीव्र संकलेश परिणाम होते हैं। अभी मान लीजिए ना, हमारे घर का भी कोई सदस्य गुजर जाता है तो हमारे को ऐसी आकुलता होती है कि कई कई लोग तो छाती पीट पीट के रोते हैं। अब वो नाटक करने के लिए रोने वाले छोड़ दो, जो मन ही मन से ऐसा करते हैं तो उनको ऐसे ही खोटे परिणाम है ना। अभी तीरंज गति वाला भी करेगा, हमें पता नहीं है तो क्या।
जैसा ना, कितना संयोग छोड़ना पड़ता है उसकी बात नहीं है, जो कुछ संयोग है उसमें तीव्र ममत्व भाव जितना है उतना संकलेश परिणाम वो छोड़ते समय होगा उसका। हमारे पास लाख रुपए के, हजार रुपए के, सौ रुपए है, उसमें हमारा कितना आसक्ति कितनी है उस पर ऐसा बंद होगा। ये हो गया क्या? अभी रुकेंगे, ये अभी 82वां हम आए ना, यहाँ 82 पेज पर है। हाँ 82 अभी हमने पढ़ा, यह सूत्र सुबह में नहीं, अभी 3 मिनट है बाकी, 2 मिनट रुकेंगे अभी, ये सूत्र बड़ा है यहाँ। हाँ प्रश्न है तो पूछना। ये ऐसे अलग अलग परिणाम होते हैं, ये नाम कर्म तो सदैव ही बंद रहा है। ऐसा नहीं कि जब ही आयु का बंद करने का टाइम आया तभी ये बंदेंगे। जीव सुबह से शाम तक, अभी मिथ्या दृष्टि कोई भी जीव है, सुबह से शाम तक कभी नरक गति बांध रहा है, कभी 28 का बंद कर रहा है, कभी तिर्यक गति संबंधी, कोई कभी कभी ऐसे परिणाम हो गए कि 23 वाला वो अपर्याप्त एक इंद्रिय का बंद कर रहा है, कभी कभी ऐसे, ये सब अंदर पड़े रहते हैं। और जब जिस जैसे पर्याय में जाएगा वैसे वैसे वहाँ उदय चालू हो जाएगा। चलो जावाणी के ज्ञान ते